नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने देने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविंदर इंद्राज सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 20 करोड़ के लागत वाले कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस एलपीजी सिलेंडर पर कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और दिल्ली यातायात पुलिस ने कल सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच अति विशिष्ट व्यक्तियों के राजघाट दौरे के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने देने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। आज राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं संसद और राज्य विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए आधारहीन कारणों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
30 साल एक लंबी लड़ाई लड़ करके ये दिन आया था जब लगा कि शायद ये बिल पास हो जाएगा। लोगों ने कहा कि नंबर नहीं था तो क्यों लेके आए ये बिल। लगा कि देश के हित में, महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में शायद विपक्ष 2023 के समान इस बार भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जल्द से जल्द महिलाओं को उसका ये अधिकार मिले उसके लिए इस बिल को पास कराएगा। पर उन्होंने पूरी रूप से अपना महिला विरोधी चेहरा दिखा दिया।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली सेमीकंडक्टर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को सेमीकंडक्टर डिजाइन, उन्नत अनुसंधान और विकास तथा असेंबली गतिविधियों के लिए एक सक्षम केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो देश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास में दिल्ली की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस ड्राफ्ट से राजधानी में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा और निवेश प्रोत्साहन तथा अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविंदर इंद्राज सिंह आज अपनी विधानसभा में लगभग 20 करोड़ की लागत से कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इसमें 3 किलोमीटर लंबे खेतों के मार्ग का निर्माण कार्य शामिल है।
सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह सड़क किसानों और ग्रामीणों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं श्री सिंह ने दरियापुर कला में लगभग 5 करोड़ की लागत से निर्मित फिरनी रोड का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अब नागरिकों को सुगम, सुरक्षित और तेज जुड़ाव का लाभ मिलेगा, साथ ही यातायात व्यवस्था मजबूत बनेगी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने प्रहलाद विहार में लगभग 45 लाख रुपए की लागत से नई जल पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि करीब 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पहली बार पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे अब स्थानीय निवासियों को स्वच्छ, नियमित और निर्बाध जल आपूर्ति का लाभ मिलेगा। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई को नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत किया है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाइजीरियन नागरिक शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से उच्च गुणवत्ता की 90 ग्राम मादक पदार्थ जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक आकी गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 37,500 रुपए नगद, 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, पैकिंग सामग्री और सप्लाई में इस्तेमाल वाहन जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह संचालक और उसके साथियों ने तिलक नगर में एक किराए के मकान को वैध कारोबार का अड्डा बना रखा था। इसके अलावा आरोपी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए पासवर्ड आधारित एक्सेस सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी का इस्तेमाल करने वाले एक अत्यंत परिष्कृत कार्यप्रणाली का उपयोग करते थे, जिसके कारण से दिल्ली पुलिस ने मानवीय निगरानी के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का सक्रिय रूप से सत्यापन किया जा रहा है और आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने एलपीजी सिलेंडर पर कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने आज संगम विहार में एक डिलीवरी एजेंटों से 68 भारत गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। पुलिस ने डिलीवरी एजेंटों से 36 भरे हुए, 29 खाली और 3 टूटे हुए सील बंद सिलेंडर जब्त किया है। अगली कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में कालाबाजारी और मनमानी कीमत वसूली के लिए जमा किए गए 57 एचपी गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई में अवैध सामान की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया गया एक टाटा पिकअप वाहन और गैस भरने के उपकरण जब्त किए हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज शांति भवन किंग्सवे कैंप में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित रन फॉर मदर अर्थ स्टेप्स ऑफ पीस फॉर अ ग्रीनर गोल्डन एज रनेथॉन में शामिल हुए और विजेताओं को सम्मानित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि ये आयोजन पर्यावरण चेतना और सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने वाली एक प्रेरणादायक पहल है जो एक अधिक हरित स्वस्थ और शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में सार्थक कदम उठा रही है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इनमें सेक्टर 13 और बंकिम चंद्र चटर्जी पार्क में ओपन जिम, सेक्टर 18 के सूरज पार्क स्थित तिकोना पार्क की चारदीवारी के पुनर्निर्माण कार्य और जन सुविधा कॉम्प्लेक्स के नवीनीकरण जैसे अन्य कार्य शामिल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू आज राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नया पंजाब संकट से परे एक एजेंडा विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने सामाजिक विरासत को बढ़ाने, शिक्षा में निवेश करने, कौशल नवाचार को बढ़ावा देने और मजबूत तथा टिकाऊ संस्थाओं का निर्माण करने पर बल दिया। साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि पंजाब की कहानी यहां उपस्थित लोगों के साहस, जुझारूपन और दूर दृष्टि का जीता जागता प्रमाण है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज लोधी रोड स्थित पालिका निवास हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक पेड़ मां के नाम ऑन संडे पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री चहल ने कहा कि ये पहल पर्यावरण के प्रति जागरूकता, जिम्मेदारी की भावना और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित विरासत सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम के दौरान रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र से संबंधित रख रखाव संबंधी मुद्दे भी उठाए जिनके समाधान के लिए श्री चहल ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि अक्षय तृतीया के दिन देश भर में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के व्यापार होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष के लगभग 16,000 करोड़ रुपए के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। श्री खंडेलवाल ने बताया कि अकेले दिल्ली में ये व्यापार लगभग 6,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया पारंपरिक रूप से सोना खरीदने के लिए देश के सबसे शुभ अवसरों में से एक रही है। उन्होंने कहा कि इसकी ऊंची कीमतों के बावजूद मांग कमजोर नहीं हुई है बल्कि लोगों द्वारा खरीदारी अब अधिक सोच समझकर और मूल्य आधारित हो रही है। राजधानी के शाहदरा इलाके में आज गली नंबर 12 के एक घर में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 6 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। आग पर अब काबू पा लिया गया है और अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं शाहीनबाग इलाके में से भी आग लगने की एक और घटना सामने आई है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने के लिए 4 दमकल गाड़ियां लगाई गई, आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कल सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच अति विशिष्ट व्यक्तियों के राजघाट दौरे के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
यातायात पुलिस के अनुसार आईटीओ चौक से दिल्ली गेट, आसफ अली रोड शांतिवन चौक से निषाद राजमार्ग, गुरु नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर, राजघाट डीटीसी डिपो से रिंग रोड बाईपास और इससे सटे अन्य क्षेत्रों में यातायात बाधित रहेंगे। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कल सुबह 8 बजे संस्कृत भारती के नए केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यातायात बाधित रहेंगे। यातायात पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे प्रभावित मार्गों से बचे, अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और किसी भी असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। साथ ही सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए वाहनों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही पार्क करें। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं प्रशांत कुमार।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नागरिकों से अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने और स्वस्थ यकृत तथा स्वस्थ भविष्य के लिए प्रतिदिन बेहतर विकल्प चुनने का आह्वान किया। विश्व यकृत दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि स्वस्थ यकृत स्वस्थ जीवन की कुंजी है। उन्होंने नागरिकों को मानव शरीर को स्वस्थ और सुचारू रूप से कार्य करने में यकृत यानी लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लीवर को स्वस्थ रखने में पौष्टिक भोजन, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने जैसी सरल आदतों का विशेष महत्व है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 2,500 से अधिक लाभार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों के माध्यम से प्रशिक्षित किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की आजीविका और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना है। मंत्रालय ने कहा कि पारंपरिक शिल्प कौशल में एआई को एकीकृत करने से डिजिटल अंतर को कम करने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और नए बाजार के अवसर खोलने में मदद मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का जिम्मेदार और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। आयोग ने निर्देश दिया कि किसी भी भ्रामक या गैर कानूनी एआई जनित या भ्रामक जानकारी मिलने के 3 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस पर कार्रवाई करनी होगी। आयोग ने बताया कि चुनाव की घोषणा के बाद से 11,000 से अधिक पोस्ट या यूआरएल की पहचान कर उन पर कार्रवाई की गई है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ आज उत्तराखंड में वार्षिक 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई। गंगोत्री मंदिर के भीतर देवी गंगा की प्रतिमा और यमुनोत्री मंदिर परिसर में यमुना की प्रतिमा पूरी रीति रिवाज के साथ स्थापित की गई। मंदिरों को फूलों से सुंदर तरीके से सजाया गया है और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस बीच केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये पावन पर्व हर घर में उन्नति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना की कि ये शुभ अवसर सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, नई सफलताएं और निरंतर उल्लास का संचार करे। राजधानी में आज दिनभर धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने देने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविंदर इंद्राज सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 20 करोड़ के लागत वाले कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस एलपीजी सिलेंडर पर कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और दिल्ली यातायात पुलिस ने कल सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच अति विशिष्ट व्यक्तियों के राजघाट दौरे के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।